नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक खास उद्बोधन पर आधारित है, विधा को समझें विधि में न उलझें। तो मतलब सवाल ये है कि जब हम अध्यात्म की राह पर चलते हैं तो असली चीज क्या है? क्या वो पूजा पाठ का तरीका, बाहरी कर्मकांड या फिर कुछ और?
नमस्कार। हाँ, ये सवाल बिल्कुल अध्यात्म के दिल में है कह सकते हैं। और पूज्य गुरुदेव ना इस उद्बोधन में बहुत साफ करते हैं कि अध्यात्म का जो प्राण है, जो असली जान है, वो है श्रद्धा, मतलब गहरी आस्था, पूरा विश्वास।
श्रद्धा,
हाँ श्रद्धा। और ये जो बाकी चीजें हैं, जैसे कर्मकांड हो गए, प्रतीक हैं, पूजा की विधियां हैं, ये सब तो शरीर जैसे हैं, बाहरी ढांचा।
अच्छा,
विधा यानी जो मूल सिद्धांत है, जो समझ है, वो विधि यानी प्रक्रिया से कहीं ज्यादा जरूरी है। असल चीज विधा है।
इसको समझने के लिए पूज्य गुरुदेव ने जो एकलव्य का उदाहरण दिया है वो तो कमाल ही
है ना।
सोचिए, एक लड़के ने मिट्टी की मूर्ति बनाई गुरु द्रोणाचार्य की और उसमें अपनी पूरी श्रद्धा, पूरी भावना डाल दी और नतीजा वो ज्ञान पा लिया जो शायद साक्षात गुरु के पास रहकर भी ना मिलता।
ना मिलता,
ये तो श्रद्धा की ताकत हुई ना।
बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज आप मीरा की जीवन में भी देखिए। उनके लिए तो वो पत्थर की मूर्ति, वो साक्षात कृष्ण बन गई थी। कैसे? सिर्फ श्रद्धा के बल पर।
हाँ,
रामकृष्ण परमहंस को ही देख लीजिए। माँ काली की मूर्ति उनके लिए क्या थी? उनकी अपनी श्रद्धा का ही तो रूप थी। तो ये उदाहरण यही दिखाते हैं कि कोई भी प्रतीक हो या कर्म कांड हो, वो तभी मतलब का है, तभी उसमें जान आती है, जब साधक की अपनी भावना, अपनी गहरी श्रद्धा उससे जुड़ जाए, वरना वो बस एक बाहरी चीज है।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है फिर कि अगर श्रद्धा ही सब कुछ है तो क्या फिर ये कर्मकांड, ये मंत्र जाप, मूर्तियां, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है? क्या इनको छोड़ दें?
नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि इनकी जरूरत है, मगर साधन की तरह।
साधन की तरह मतलब?
हाँ, जैसे आत्मा को खुद को व्यक्त करने के लिए शरीर चाहिए ना, वैसे ही समझ लीजिए कि मन को साधने के लिए, उसको एकाग्र करने के लिए और श्रद्धा को जगाने बढ़ाने के लिए किसी न किसी सहारे की, किसी प्रतीक या विधि की जरूरत पड़ती है।
अच्छा,
ये मन को एक जगह टिकाने में मदद करते हैं, लेकिन मुश्किल तब होती है ना जब हम साधन को ही मंजिल समझ बैठते हैं।
हाँ, ये बात सही है।
बस विधि में ही अटक गए कि मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो, एक अक्षर भी इधर उधर ना हो, या पूजा का क्रम बिल्कुल सही हो। ये सब अगर बिना श्रद्धा के कर रहे हैं तो ये खोखला है। याद कीजिए ना, वाल्मीकि जी का वो मरा मरा जपना भी तो फल दे गया। और कई विदेशी जो गायत्री मंत्र सही से बोल भी नहीं पाते, उनकी श्रद्धा ने उसे भी सार्थक बना दिया। भाव मुख्य है।
ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाव ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात ध्यान आती है, श्रद्धा की एकाग्रता। पूज्य गुरुदेव ने वो किस्सा सुनाया था ना, उस आदमी का जो जल्दी नदी पार करने के लिए राम और खुदा दोनों का नाम साथ साथ जपने लगा और डूब गया। ये क्या सिखाता है?
हाँ, ये बहुत पते की बात है। ये दिखाता है निष्ठा की कमी, एकाग्रता की कमी। 100 जगह मन भटकाने से तो अच्छा है कि एक ही जगह, एक ही प्रतीक या इष्ट पर पूरी गहरी श्रद्धा टिकाई जाए। और पूज्य गुरुदेव एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि भगवान कोई इंसान नहीं है जिसे हमें पटाना है या रिश्वत देनी है। भगवान तो असल में ऊंचे आदर्शों का, महान सिद्धांतों का नाम है।
सिद्धांतों का नाम?
हाँ, जैसे सत्य, प्रेम, न्याय, सेवा, पवित्रता, ये सब। तो सच्ची पूजा क्या है? इन सिद्धांतों को, इन गुणों को अपने जीवन में उतारना, अपना सुधार करना, आत्म परिष्कार।
अच्छा, तो मतलब पूजा का अर्थ सिर्फ बाहर कुछ करना नहीं बल्कि अपने अंदर बदलाव लाना है।
हाँ, जैसे गायत्री उपासना के उदाहरण से भी शायद यही समझाया गया है। हाँ बिल्कुल, गायत्री माँ की जो छवि है उसे सिर्फ एक मूर्ति या तस्वीर की तरह नहीं देखना है, उसके पीछे जो सीख है उसे पकड़ना है।
जैसे?
जैसे माँ की छवि से नारी मात्र के लिए आदर का भाव, पूज्य भाव जगाना, हर नारी में माँ का रूप देखना। उनके वाहन हंस को देखिए, वो नीर क्षीर विवेक सिखाता है। पानी और दूध अलग कर देना, मतलब सही गलत की पहचान करना सीखना, जीवन में विवेक को अपनाना, ये है विधा को समझना।
और वो जो पंचोपचार पूजन करते हैं हम लोग, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, वो भी सिर्फ चीजें चढ़ाना नहीं है।
बिल्कुल नहीं, वो सब प्रतीक हैं, गहरे अर्थ हैं उनके। जल चढ़ाने का मतलब है कि हम अपने जीवन में पवित्रता और शीतलता लाएंगे, चंदन की तरह दूसरों को ठंडक देंगे, उनके काम आएंगे। अक्षत यानी थोड़े से चावल, वो इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी कमाई का, अपने साधनों का एक हिस्सा समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए जरूर निकालेंगे नियमित रूप से।
अच्छा, ये तो बहुत गहरा अर्थ है।
हाँ, और पुष्प फूल की तरह खुद भी खिले रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी खुशी देंगे, उल्लास बांटेंगे। और नैवेद्य मतलब मिठाई, उसका अर्थ है कि हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में मिठास हो, कड़वाहट न हो। ये है कर्मकांड के पीछे की विधा को जीना।
तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर विधि मतलब कर्मकांड अपनी जगह ठीक हैं, उपयोगी हैं, पर वो पल तभी देते हैं जब उनके पीछे की विधा यानी उनका सिद्धांत, उनका ज्ञान समझा जाए, और सबसे जरूरी उनमें गहरी श्रद्धा का प्राण हो। उसके बिना सब बेकार है, है ना?
एकदम सही, बिल्कुल यही बात। पूज्य गुरुदेव का संदेश बहुत साफ है, बाहरी क्रियाओं के जाल में मत उलझो, उसके बजाय अपने अंदर देखो, श्रद्धा जगाओ, सिद्धांतों को समझो और फिर उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारो, अपने आप को बेहतर बनाओ।
सही,
यही सच्ची उपासना है और इसी से जीवन में असली बदलाव आता है, असली उन्नति होती है। और जिसे लोग चमत्कार कहते हैं ना, वो भी इसी श्रद्धा और सही समझ से ही संभव होता है।
इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल शायद हम अपने मन में रख सकते हैं सोचने के लिए, कि हमारी जो भी आध्यात्मिक या धार्मिक क्रियाएं हैं, वो कहीं सिर्फ बाहरी विधियों तक ही तो सिमट कर नहीं रह गई। क्या हम सच में उनके पीछे की विधा को और उससे भी ज्यादा उस श्रद्धा को अपने रोज के जीवन में जी रहे हैं? सोचने वाली बात है।